نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال علم پارا نمبر 16 ہے دورہ قرآن 2023 عظمت صحابہ میں سے آج ہم اس کو جس موضوع پر لیں گے وہ ہے پچھلی نشست پر بیٹھنے پر راضی ہونا اس کا یہ نہیں مطلب کہ اس روم میں آپ سب سے پیچھے جا کے بیٹھ جائیں اس کا کیا مطلب ہے اس کو اگر ہم صحابہ کی زندگیوں میں سے دیکھ لیں اور اگر اس پہ ہم اپنا عمل بھی سیٹ کر لیں تو یاد رکھیے جو اللہ نے صحابہ سے کام لیا انشاءاللہ وہ نہیں تو اس جیسا کام اللہ تعالیٰ ہم سے بھی لے گا صحابہ کرام کو اپنی ذات سے زیادہ اسلام پیارا تھا یہ ہم آج تک کئی دفعہ جان چکے اب آپ کے بھی دل اس پہ گواہی دیتے ہوں گے کیونکہ جب اپنی ذات پیاری ہوتی ہے تو ہر جگہ اس کو آگے کرنا میں مائی سیلف آئی ایم انا بڑی چیز وہاں ہر چیز انسان کو اپنی اچھی لگتی ہے لیکن صحابہ کرام کا یہ معاملہ نہیں تھا ان کو اسلام سب سے پیارا تھا وہ یہ دیکھتے تھے کہ کس میں اسلام کا زیادہ فائدہ ہے میں وہ کروں بلکہ جو پیچھے باقیات و صالحات پہ بھی بات ہوئی وہاں بھی یہی کام آتا ہے آپ اپنی ذات سے ورسز اسلام کی ذات کو لے آتے ہیں تو پھر آپ کو اسلام پیارا ہوتا ہے اللہ کے نبی دنیا سے رخصت ہوتے ہیں سب سے پہلا مسئلہ جو آپ کے رخصت ہوتے ہی ہوا کہ اب اگلا خلیفہ کون ہوگا انصار میں بنو ساعدہ سا سین الف عین دال خا ان کی ایک چوپال تھی جیسے آپ بیٹھک کہہ لیں اس کو ثقیفہ یعنی بنو ثقیفہ کا نام بھی آپ نے سنا ہوگا سب لوگ اس میں جمع ہو گئے سعد بن عبادہ جن کا پیچھے بھی تذکرہ پڑا تھا یہ انصار کے سب سے زیادہ ابھرے ہوئے سردار تھے انصار میں سے بہت سارے لوگوں کا خیال یہ تھا کہ اللہ کے نبی کے بعد اب سعد بن عبادہ کو خلیفہ مقرر کیا جائے اب دل میں خیال تھا نا مہاجرین کو اس بات کی خبر پہنچ گئی کہ یہ کچھ ہو رہا ہے ادھر جو بڑے بڑے چنے چنے صحابہ تھے نا وہ سب فوراً وہاں پہنچے اور ابو بکر صدیق نے ایک تقریر کی تھی جا کر آج بھی پڑھ لیجئے عربی کتابوں میں بھی آپ کو مل جائے گی سیرت ابن ہشام میں مل جائے گی میں آپ کو اس کا تھوڑا سا اردو ترجمہ سناتی ہوں یہ ابو بکر کی وہ صدیقیت والی شان کہ جس نے ان کو حکمت بھی دی تھی کہتے ہیں کہ انصار تم نے اپنی جس فضیلت کا ذکر کیا ہے اس کے تم اہل ہو یعنی یو ڈیزرو اٹ یو ہیو دی کیپیبلٹی ٹو بی اے خلیفہ مگر عرب اس معاملے یعنی عمارت کو قریش کے سوا کسی اور قبیلے کے بارے میں جانتے ہی نہیں یعنی صدیوں سے سال خا سال پورے عرب میں بس ایک قبیلہ سردار بنتا تھا اور وہ قریش تھا اور اسی میں سے اللہ نے اپنے پیارے نبی کو چنا وہ عربوں میں نسب اور مقام کے اعتبار سے سب سے بہترین ہے میں تمہارے لیے ان دو آدمیوں کون کہہ رہا ہے ابو بکر نام کن کے لے رہا ہے ایک میں اور ایک کوئی اور نہیں عمر رضی اللہ عنہ اور ابو عبیدہ بن جراح میں سے کسی ایک پر راضی ہوں تم دونوں میں سے جس سے چاہو بیعت کر لو اب عمر کا نام آئے اور عمر بیٹھے رہے فوراً کھڑے ہوئے انہوں نے فوراً حضرت ابو بکر کے ہاتھ پر خلافت کی بیعت کی اور تمام مہاجرین نے حضرت عمر کے پیچھے ابو بکر کے ہاتھ پر بیعت کی اب یہ منظر ہو رہا ہے انصار اٹھتے اور آ کر اللہ کے نبی کے اس صدیق جن کے زندگی میں اشارے تھے کہ اللہ کے نبی کے بعد خلیفہ یہ ہوں گے آپ کی زندگی میں آپ کے مسلح پہ ہی آگئے امامت انہوں نے کرا دی نبی کی زندگی کی آخری نمازیں ان میں سے اکثر نمازیں ابو بکر نے امامت کی تھیں اور بھی کئی اشارے موجود ہیں انصار خاموشی سے اٹھے اور آ کر انہوں نے ابو بکر کے ہاتھ پر بیعت کر لی نو ویو نو ایشو انصار کا ایک طبقہ ایسا تھا جن کے لیے یہ واقعہ اتنا سخت تھا کہ ایک شخص نے مہاجرین سے کہا کہ تم لوگوں نے سعد بن عبادہ کو قتل کر دیا قتل تم سعد بن عبادہ کیوں ان کی نظر میں لیڈر تھے کیونکہ انصار نے اسلام کے لیے بے پناہ قربانیاں دی تھیں انہوں نے اسلام کے بے یارو مددگار قافلے کو اس وقت پناہ دی जबकि उनको मक्का से निकलने पे मजबूर कर दिया, लेकिन कोई इशू नहीं बना। अंसार ने इस फैसले को दिल की खुशी से माना। क्यों? लिखिए, इख्तदार में इनका हिस्सा हो के ना हो, और खलीफा इनकी तरफ से मदीना के लोगों या अंसार में से कोई हो ना हो, बल्कि मुहाजरीन और कुरैश में से मुंतखब किया जाए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्योंकि इस सारे मामले के पीछे मसलहत क्या थी कि नबी के जाने से जो एक खला हुआ है, लीडर्स के जाने के बाद एक खला पड़ता है, माँ भी घर से जाती है तो थोड़ी देर के लिए बच्चा रोता है, फिर चुप हो जाता है, कितनी सी बात है। अल्लाह के नबी के बाद का जो खला था ना, वो नए लोगों से नहीं था पुराना, पुराने लोग जिनको लोग नबी के साथ साथ देखते थे ना, उनसे नबी की खुशबू आती थी उनको। उनको ये पता था कि इसमें बहुत बड़ी खैर है, कोई शक नहीं कि इसमें मसले थी। कुरैश सैकड़ों साल से अरब के कायद बने हुए थे, ऐसी हालत में अगर किसी गैर कुरैशी को खलीफा मुकर्रर कर दिया जाता तो उसके लिए इज्तमाई नज़्म को, डिसिप्लिन को संभालना नामुमकिन हो जाता। और इस पे एक मिसाल आपको भी याद आ रही है, मूसा जब तूर पे गए तो किसको खड़ा किया पीछे? हारून को, क्योंकि मूसा हारून एक ही लग रहे ना। इसके बावजूद देखे कि हारून की बात ना मानी कौम ने, तो कहाँ अगर मूसा किसी और तीसरे बंदे को खड़ा कर देते। तो ये अंसार की हकीकत पसंदी थी कि उन्होंने अपनी इस कमी को, जो उनके हाथ में नहीं थी, कमी थी ना कि वो कुरैशी नहीं थे, यक तरफा फैसले पे राजी हो गए। और आप कह लें कि ये वो मिसाल है, ऐसी मिसाल तारीख में नहीं मिलती, और हमें वो सबक सिखा गए कि पिछली नश्तों पर बैठने पर राज़ी हो जाओ, लेकिन आपस में लड़ाई झगड़े ना करो। आज हमारे लीडरशिप के झगड़े, फर्स्ट एंड सेकंड पर्सन के झगड़े, कौन प्रेसिडेंट और कौन उसका सेक्रेटरी, इस पे झगड़े, किसके हाथ में चाबी, किसके नहीं, किसके साइन चलेंगे, किसके नहीं चलेंगे, ये झगड़े सहाबा में नहीं थे, और ये हर उसमें आज भी नहीं होंगे अल्हम्दुलिल्लाह, और आज हैं भी नहीं जहाँ मकसद प्यारा होता है। हमने पीछे पढ़ा था कि कैसे हज़रत उमर ने खालिद बिन वलीद को हटाकर दूसरों को आगे कर दिया, उबैदा बिन जराह को, नो किशो। तो कल तक आप यहाँ थे, अब आप वहाँ हैं, इस ओके। यहाँ की वजह मुझे पीछे बिठा दें, इस ओके, बल्कि और ईजी होगा मेरे लिए। क्यों? इसलिए कि काम जहाँ ठीक हो, अपनी ज़िंदगी में आप अपने साथ एक कुर्सी पे दूसरे को बिठाएं, और फिर वो जब तैयार होता जाए तो आप पीछे होकर उसको आगे लाते जाएं। देखिए, फूल है ना, शुरू में पत्तियाँ होती हैं, जैसे गेंदे का फूल जिन में लाइए, खुलती जाती है ना पत्तियाँ, तो पिछली पत्तियाँ जो पहले थी ना, वो पीछे होती जाती हैं और अंदर से अगली आती जाती है, ऐसी है ना। और एक वक्त क्या आता है कि जो पुरानी पत्तियाँ थी ना, वो बिल्कुल पीछे आकर चौकीदार बनी हुई हैं, हुदूदुल्लाह की हिफाजत करने वाली, और अंदर नई नई पत्तियाँ। दैट इज़ द बेस्ट रूल फॉर मैनेजमेंट। पीछे रहिए, पुराने लोग कहीं नहीं जाएंगे, वो जाते भी नहीं, लेकिन नए आने वालों को मोहब्बत और प्यार से अपनी ज़िंदगी में ट्रेन कीजिए। और ये सुल आपका और आपकी बेटी का भी है, अपनी बेटी को अपनी कंस्टडी में, किचन में आकर खाना पकाना सिखाइए। और ये आपकी बहुत ही छोटी सी उम्र की बहू का और आपका भी है, बड़े प्यार से उसको अपने साथ सेट करके किचन में काम करना सिखा दीजिए। एक दिन आएगा वो आपसे अच्छा काम करेगी, एक दिन अच्छा आएगा कि आप बस रेस्ट करेंगे, और अगर बाहर से कोई झटका लगे ना फूल को, तो बाहर की पत्ती गिरती है, अंदर की नहीं गिरती। साहबे कराम ने एक मकसद, एक फूल, एक इस्लाम की कामयाबी को गोल बनाकर आपने आप को हर उस जगह से हल्का हल्का पीछे करके दूसरों को आगे लाना शुरू कर दिया, जिसमें वो दूसरे ज़्यादा अच्छे थे या वो उसमें कमज़ोर होते जा रहे थे। फितरत की बात है। आज भी एक औरत खाना बनाएगी, जाके जल्दी से दो तीन सालन बना के जो भी रवायती खाने हैं खुश होकर आ जाएगी। नई बच्ची को भेजेंगे, वो कहेंगे इटालियन बनाऊं कि चाइनीज़ बनाऊं, पिज़्ज़ा बनाते हैं, अच्छा आज तो हमें फुला बनाना है और लेबनीज़ फूड चाहिए, अच्छा आज हम अरेबिक फूड बनाते हैं ना। फिर वो उसके लिए जो गन डालेंगी, फिर वो जितना खाना मंगाएंगी बाज़ार से, फिर उसमें जो कुछ वो डालेंगी, उनको शौक़ है, इस उम्र में शौक़ होता है नई नई चीज़ों को आगे आगे पेश करने का। अब वो जिसने ये एक बड़ी खूबसूरत डिस्प्ले पे लाकर एक बड़ा अच्छा आपके लिए डिजर्ट बना दिया, एक बड़ी खूबसूरत सी आपके लिए लजानिया की डिश रख दी, तो इसका ये थोड़ी मत है कि पिछला सास का 40 साल का पकाया हुआ खाना बेकार था। एंड पे आपने कहा ना वही है, वो कल की न्यारी नहीं पड़ी, जरा लाना, बहू ने बनाया था, खा तो लिया पर भूख नहीं खत्म हुई, ये अब्बा जी ने कहना है ना। तो जिंदगी में थोड़ा सा पीछे हूँ लेकिन छोड़े नहीं, छोड़ देंगे ना तो वो फिर खुल जाएंगी पत्तियाँ। तो ये पिछली नशिस्तों पे बैठने का मामला, साहबा कराम की जिंदगी से जो देखे इस पारे में कहाँ देखना है अभी हम देखेंगे, तो आपको इसका अंदाजा होगा कि इसको हम इस पारे में कहाँ कहाँ देखेंगे। इस पारे की शख्सियत, नंबर एक, इसी वाक्य के साथ अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला अन्हु, इल्म के हरीस, इल्म की तलब रखने वाले, अमीरुल मोमिनीन फिल हदीस का लकब पाने वाले, कबीला दौस से आने वाले, अपने बारे में खुद कहा करते थे कि अबू हुरैरा तू क्या था, एक गुलाम, तेरी क्या औकात थी कि जहाँ काफला रुकता तू वहाँ पहले चीज़ों को ठीक करता, पानी सही करता, उनके जानवरों को बांधता, फिर काफले के सामान की देखभाल करता, और जब लोग उठ के चले जाते तो तू उनकी बची खुची चीज़ें उठाता जैसे घर के मुलाजमीन करते हैं। और इस इल्म ने तुझे इतनी कदर दी कि आज लोग तुझे अमीरुल मोमिनीन फिल हदीस कहते हैं। तो चंद जुमले अबू हुरैरा के लिए लिख लें। अबू हुरैरा, 1609 हदीसें इनकी ज़ुबान से उम्मत को पहुंची, सबसे ज़्यादा हदीसें इन्होंने पेश की। ज़माने जाहिलियत में इनका नाम अब्दे शम्स था, सूरज का बंदा। जब ये मुसलमान होकर अल्लाह के नबी को मिले तो आपने इनको कहा कि तुम्हारा नाम आज से अब्दुर्रहमान है। कहा अल्लाह के नबी आपका दिया हुआ नाम मुझे बहुत प्यारा है। अबू हुरैरा कुनियत थी, बचपन में एक बिल्ली के साथ खेला करते थे, तो इनके साथी इनको अबू हुरैरा कहने लगे। इतनी मशहूर हो गई कुनियत के नाम पे गालिब आ गई, अल्लाह के नबी इनको हुरैरा की जगह अबू हर कहते थे। और हुरैरा और हर का फ़र्क क्या है? हर मुजक्कर, हुरैरा फीमेल, यानी मिसिस बिल्ली, हुरैरा फीमेल बिल्ली, तो जो मेल बिल्ला जिसको आप कहते हैं वो खैर है। तो ये कहते थे कि मुझे भी फिर अबू हर कहलवाना अच्छा लगता है अबू हुरैरा की बजाय। तुफैल बिन अमर दौसी की वसातत से मुसलमान हुए थे, यानी किसका सदका जारिया थे ये? तुफैल दौसी का थे। हिजरत से 6 साल बाद तक ये अपनी कौम कबीला दौस में ही रहे। इसके बाद एक वफद की सूरत में जब लोग मदीना आए तो ये अल्लाह के नबी के पास आए, और ये कौन सा वक्त था? खैबर की फतह का, यानी तकरीबन आपके के 7 हिजरी के करीब का वक्त था। इन्होंने अपने आप को अल्लाह के नबी की खिदमत के लिए वक्फ कर दिया, हर वक्त मस्जिद में रहते। अब जब साथ रहे तो जो नबी के पास था वही मिलना था ना, अल्लाह के नबी से तालीम हासिल करते रहे, आपकी इमामत में नमाजें पढ़ते रहे। अल्लाह के नबी की ज़िंदगी में इन्होंने शादी नहीं की, क्यों? कहते थे बीवी बच्चों के मामलात में जब पड़ जाऊँगा तो नबी को वक्त नहीं दे सकूंगा। इनकी बूढ़ी माँ शिर्क पे थी और मुसलसल इनको शिर्क की तरफ लौटने का हुक्म बल्कि धमकियाँ देती थी, लेकिन ये बड़े प्यार और मोहब्बत से उसको इस्लाम पे लाने की कोशिश करते और वो इनकार, हठधर्मी, नफरत और हकारत से आपको डांटती थी, जिसकी वजह से ये बहुत दुखी रहते थे। एक दिन जबकि ऐसा ही कोई मामला हुआ और माँ ने खूब जली कुटी सुनाई तो ये अल्लाह के नबी के पास आ गए रोते हुए। कहा क्या हुआ? सारी कहानी सुना दी। कहने लगे अल्लाह के नबी आप अल्लाह से मेरी माँ के लिए दुआ करें, आप भी दुआएं किया करें अपने उनके लिए जिनके दिलों में अभी इस्लाम और ईमान पूरी तरह नहीं आया। अल्लाह के नबी ने कहा कि ए अल्लाह अबू हुरैरा की माँ का दिल खोल दे। कहते जब मैं घर गया ना तो हालात ही बदले, में मुझे पानी के गिरने की आवाज़ आ रही है, पता चला कि वालदा नहा रही हैं। जब घर में दाखिल होने लगा तो वालदा कहने लगी ज़रा ठहर जाओ, मैं रुक गया। खैर वो फारिग होकर अंदर आई और घर में दाखिल होते मुझे देखकर कहने लगी अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलु। वहां से दिल का वो बस वो रिमोट दबाया, अल्लाह ने दिल बदल दिया। कहते मैं उल्टे कदम वापस नबी की खिदमत में गया और मैं इतना खुश था कि मैं ज़ारो कतार रो रहा था, जैसे मैं इससे पहले गम और अंदोह की वजह से रो रहा था। अल्लाह के नबी मुबारक हो, और आपने भी उनको मुबारक दी कि आपकी दुआ कबूल हुई और माँ मुसलमान हो गई। ये दिल चाहता है फिर इसके बाद, जब दिल खुलते हैं। फिर उसके बाद अबू हुरैरा ने दिल जान से नबी सल्लम की जान के साथ अपने आप को चिपका लिया, जिसको आप कहते हैं ना कि रगो रेशे में अल्लाह के नबी की मोहब्बत भी आ गई। आपके दीदार से इनकी निगाहें नहीं भरती थी। अक्सर कहा करते थे कि मैंने अल्लाह के नबी के चेहरे से बढ़कर कोई हसीन चेहरा आज तक नहीं देखा। मुझे ऐसे लगता है कि आसमान पे सितारे जैसे चमकते हैं, नबी के चेहरे पे ऐसी चमक है। तारीफें करते और अल्लाह के नबी के साथ साथ रहते, और खुद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इनसे बहुत मोहब्बत करते थे। जी कहा करते थे कि सारी तारीफें उस अल्लाह के लिए जिसने अबू हुरैरा को इस्लाम कबूल करने की तौफीक बख्शी, सारी तारीफें अल्लाह के लिए जिसने अबू हुरैरा को कुरान मजीद का इल्म अता किया, और सारी तारीफें उस अल्लाह के लिए जिसने अबू हुरैरा को मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सहाबी होने का शर्फ दिया। आज आपको भी एक दुआ करने का तरीका मिल गया, अपने लिए ऐसे दुआ किया करें। अपना नाम लेके कहा करें कि अल्लाह आपकी सारी तारीफें हैं, जिसने जो भी नाम ले लें अपना, फातिमा, सुरैया, शम्मा, कोई भी हैं, कि जिसने मुझे दौरे कुरान करने और कराने की तौफीक दी। ये ना प्यार होता है, ये अदाएं होती हैं और अल्लाह को बड़ी प्यारी लगती हैं। हम दूसरों के लिए की भी दुआओं के सफ़ों के सफ़े फॉरवर्ड करते हैं। ये जुम्मे की दुआ, ये सुबह की दुआ, ये शाम की दुआ, दुआ तो दिल से निकलती है। और याद रखिए कि लव एट बोथ साइड, यहाँ यही था। ये नहीं था कि अबू हुरैरा को नबी से वालेहाना मोहब्बत थी, नबी के भी दिल में अल्लाह ने अबू हुरैरा की बहुत मोहब्बत रखी थी। इनको चूंकि इल्म से मोहब्बत थी और नबी इल्म का समंदर थे, तो वो मोहब्बत भर के भरते हुए चली गई। जैद बिन साबित कहते हैं कि मैं, अबू हुरैरा और हमारा एक साथी, हम तीनों अल्लाह के हजूर दुआएं मांग रहे थे, इतने में अल्लाह के नबी अंदर आ गए। हम सहम गए और खामोश हो गए। आपने इरशाद फरमाया अपना काम जारी रखो। अबू हुरैरा से पहले मैं और मेरे साथी ने दुआ की और अल्लाह के नबी ने आमीन कह दिया। फिर जब अबू हुरैरा ने दुआ की और कहा, इलाही मैं तुझसे वही मांगता हूँ जो मेरे इन दो साथियों ने मांगा, और मुझे मज़ीद वो इल्म अता कर जो मुझे कभी न भूले, और रसूलुल्लाह ने इस पर आमीन कह दिया। कहते हैं हमने कहा हम भी अल्लाह से वो इल्म मांगे जो भुलाया ना जाए, तो हमारी ये बात सुनकर रसूलुल्लाह ने कहा का दौसी नौजवान तुम पर शफ़क़त ले गया, यानी अब तुम तो देखा देखी दुआ मांगोगे। और जितनी इनको खुद इल्म से मोहब्बत थी ना, इनकी एक ख़ास खूबी थी कि दूसरे अपने साथियों के दिल में भी इल्म की मोहब्बत जगाना आती थी इनको। जो इनके साथ बैठ जाता था ना, उसको भी इल्म से मोहब्बत हो जाती थी। और एक दिन मदीना के बाजार से गुजर रहे थे तो देखा लोग दुनिया के कामों में मुनहमक हैं, गमजदा हो गए। ऊंची आवाज से बोले, ओ मदीना के रहने वालों, तुम महरूम रह जाओगे, बेकस रह जाओगे। लोगों ने कहा कैसी महरूमी, कैसी बेकसी? कहा वो तुम्हें पता है उधर नबी सल्लम की मीरास तकसीम की जा रही है और तुम यहाँ हो, अपना हिस्सा नहीं लोगे? लोगों ने कहा अच्छा, अल्लाह के नबी का विरसा तकसीम हो रहा है, मीरास हो रही, किधर चलो भागो। सुनो, वो मस्जिद में गए, भागे भागे के पता नहीं को प्याला कोई चमचा हमें भी मिल जाए। खैर जब वहां गए तो कुछ भी नहीं था, ये खड़े हैं और लोग जाकर देख रहे हैं। कल के अबू हुरैरा, हमें तो वहां कोई तकसीम होती चीज नहीं दिखी। तो कहने लगे, क्या तुमने वहां जाकर कुछ लोगों को नमाज पढ़ते नहीं देखा? कुछ कुरान पढ़ रहे थे, कुछ हलाल और हराम के बारे में तबादला ख्याल कर रहे थे। कहा ये सब तो हो ही रहा था मस्जिद में। कहा बड़े अफसोस की बात है, यही है नबी की मिरास। इल्म से मोहब्बत करने वालों की अदाएं और उनके जोक्स और उनकी मिसालें भी निराली होती हैं। तो बहरहाल खुद को वक्फ कर दिया, भूख प्यास फकर फाका की तकलीफें बर्दाश्त की, ऐसी किसी ने ना की। कहते हैं कि जब भूख से मेरे पेट में बल पड़ते तो मैं असहाबे रसूल से कुरानी आयात का मफहूम पूछता, हालांकि मुझे पता होती थी। मकसद ये था कि शायद मेरी सूरत और मेरे चेहरे की कमजोरी को देखकर वो मुझे खाना खिलाने के लिए ले जाए। और एक दिन जब बहुत भूख लगी और पेट पे पत्थर बांध कर रास्ते में बैठ गया। पहले अबू बकर मेरे पास से गुजरे, मैंने आयत पूछी, उन्होंने बस बता दिया। मैं समझ रहा था कि दावत देंगे, लेकिन चले गए। फिर उमर आ गए, वो भी ये करके चले गए, और उसके बाद फिर मेरी रम्स को पहचानने वाले मोहम्मद रसूलुल्लाह हैं। कहा, अबू हुरैरा क्या है? कहने के मेरे साथ आओ। लब्बैक या रसूलुल्लाह, जी बताइए। कहते मेरे साथ चलो, मैं आपके पीछे गया। कहते जब मैं आपके घर में गया ना, तो आपके घर में एक दूध का प्याला रखा हुआ था। घर वालों से पूछा, ये कहाँ से आया है? उन्होंने कहा, फलां साहब ने आपको भेजा। इससे पता चलता है कि एक दूसरे को आप भी इफ्तारी भेज दिया करें, ये भी जायज़ है, कोई बुरी बात नहीं है। केयरिंग इज शेयरिंग। आपकी इफ्तारी वो खा लें और उनकी आप खा लें, आपके रोज़े का उनको और उनके रोज़े का आपको सवाब हुआ, ये भी किया करें, हिकमत होती है। ठीक है, खैर। कहते अच्छा, दूध का प्याला रखा था। अब तो ज़रा अबू हुरैरा का हाल सोचिए। पर अल्लाह के नबी भी कोई आम उस्ताद नहीं थे। आम उस्ताद जो थे ना, वो इतने इम्तिहान नहीं लेते जैसे अल्लाह के नबी लेते थे। कहा जाओ, सारे अहले सुफा को लेकर आओ। कहते मेरे दिल में आया, दूध का एक प्याला अहले सुफा का क्या बनाएगा? भूख से तो दिल चाह रहा है कि सारा प्याला मुझे ही मिल जाए और जिस समय कोई ताकत आ जाए। लेकिन नबी के हुक्म के आगे चूँ चिरा नहीं, गए बुला लिया। सब आ गए, 60-70 के करीब लोग थे एक मौके पे। खैर, कहा भूख रह रहा, अब आप ही इनको बारी बारी दूध पिलाइए। और फिर वही हुआ जो आप सबने कई बार सुना हुआ, सब का पिया हुआ दूध, कहा आप पीजिए। आप पर नबी सल्लम थे, कहा पिया पिया, इतना पिया कि काला के नबी, अब तो मेरे अंदर से दूध टपकने लगा। और सब का बचा हुआ फिर आपने पी लिया। लेकिन याद रखिए कि ये गुरबत के दिन ज़्यादा दिन नहीं रहे, आए ही खैबर में थे। इसके बाद तो मुसलमानों पर रिज़्क़ के दरवाज़े खुल गए और जो माल गनीमत आता था अबू हुरैरा को भी मिलने लगा। फिर इन्होंने घर बनाया, सामान लिया, शादी की। लेकिन इस माल की ज्यादती से इनके पाकीज़ा दिल में कोई तब्दीली ना आई। अपने बारे में अक्सर कहा करते थे, मैंने यतीमी की हालत में परवरिश पाई, मिस्कीनी की हालत में हिजरत की। बुसरा बिनते गजवान औरत थी, उसकी सिर्फ 2 वक्त की रोटी पे मैं मुलाजिम था, यानी काम करते थे और 2 वक्त की रोटी बस मिलती थी। जब मुसाफिर पड़ाव करते तो मैं इनकी खिदमत करता, जब वो कूच करते तो मैं इनकी सवारियों को हांकता। फिर अल्लाह ने ऐसे असबाब पैदा कर दिए कि मेरी शादी इसी औरत से हो गई जिसके पास वो मुलाजिम थे। शुक्र है उस अल्लाह का जिसने दीन को एक ज़ाब्ता हयात बनाया और अबू हुरैरा को मुसलमानों का अमीर बनाया। आप फील करें कि अल्लाह से दुआ भी बड़ी अजीब से रंग में करते हैं। कुछ लोग कहते हैं आपकी तो दुआएं भी नहीं हमसे मिलती, पता नहीं आप लोग क्या दुआएं करते हैं, हमें तो वो लंबी चौड़ी दुआएं चाहिए। तो बहरहाल, ना सिर्फ यह कि इल्म, बाद में इनको गवर्नरी भी मिली थी। मुआविया बिन अबी सुफियान के अहद में ये मदीना के गवर्नर बने थे। लेकिन गवर्नर बनने के बाद भी इनके अंदर कोई नहीं आया कि अब मैं बड़ा हो गया और मेरे को प्रोटोकॉल होने चाहिए। टकड़ियों को इकट्ठा उठाकर गुजर रहे थे बाजार से, हालांकि ये गवर्नर थे। सालबा बिन मालिक इनके पास से गुजरे, कहा कि इब्ने मालिक, अपने गवर्नर के लिए रास्ते को वसी कर दो। कहा क्यों, क्या हुआ? कहा इसलिए कि तुम्हारे गवर्नर के सर पे जो गट्ठड़ है ना लकड़ियों को, वो इतना चौड़ा है कि इस रास्ते से नहीं गुजर सकता। दूसरों से बढ़कर काम करने वाले, तकवा भी था, तहारत भी थी, रोजे भी रखते थे कसरत से, और रात का 1/3 इबादत में मसरूफ, फिर 1/3 बीवी, और 1/3 में बास कहते हैं बेटी, और बास कहते हैं कि घर में गुलाम था वो इबादत करता था। अबू हुरैरा के घर में पूरी रात इबादत होती थी। और बड़ा कुछ है, बस आप और मैं ये दुआ कर दें कि अल्लाह हमें ऐसा दिल दे दे। इनकी बेटी ने एक बार कहा कि मेरी दोस्तें मुझे ताना देती हैं कि तेरे अब्बू ने तेरे लिए सोने का कोई जेवर नहीं बनाया। तो कहते थे कि बेटा, अपनी सहेलियों से कहना मेरे अब्बा जहन्नुम के अंगारों से डरते हैं। अब ये नहीं होता कि जेवर पहनने से अंगारे आ गए, मुराजिया के जवाब दे ही होगी। ये नहीं कि बखील थे, सब अल्लाह के रास्ते में दे देते थे। और एक वाक्य ऐसा भी आता है कि इनके पास गलती से कुछ दिनार पहुंच गए थे मिरवान बिन हकम की तरफ से। अगले दिन उसने पैगाम भेजा कि मेरे गुलाम ने गलती से आपको दे दिए, वो तो किसी और जगह जाने थे। ये सुनकर अबू हुरैरा के हाथों के तोते उड़ गए। कहने लगे, वो तो मैं कल ही का सब अल्लाह के रास्ते में दे चुका हूँ कि एक रात नहीं गुजरी कि मेरे घर में ये रहें और जब बैतुल माल में से मेरा हिस्सा निकलेगा ना तो उसमें से ले लीजिए। तो ये हैं वो शख्सियात, वो लोग कि जिनको अल्लाह रदी अल्लाह अन्हु व रदू अन कहता था। अपनी माँ के साथ ताल्लुक इनका जो था और इनकी वो दुआएं अपनी माँ के साथ हुस्न सलूक की ज़र्बुल मिसल है। और इनकी मौत कैसे हुई थी? मरजुल मौत में मुबतला हुए तो ज़ारो कतार रो रहे हैं। लोगों ने कहा कि अबू हुरैरा आप क्यों रो रहे हैं? कहने लगे मैं तुम्हारी इस दुनिया पर आंसू नहीं बहा रहा, यानी दुनिया छोड़ने का गम नहीं, मुझे तो गम यह है कि सफ़र बहुत लंबा है आगे और ज़्यादा राह बहुत थोड़ा है। मैं इस रास्ते के किनारे पर खड़ा हूँ जो या तो मुझे जन्नत में ले जाएगा या जहन्नुम में, और मुझे नहीं पता कि मेरा अंजाम क्या होगा। और खलीफा वक्त जो मेरवान बिन हकम थे वो इनकी इबादत कर रहे हैं और इनको दिलासा दे रहे हैं। कहने लगे फिक्र नहीं करें, अल्लाह ताला आपको शिफा दे। और कहने लगे कि ए अल्लाह मैं तेरी मुलाकात को महबूब जानता हूँ, यानी अब मैं तेरे पास आना चाहता हूँ, तू भी मेरी मुलाकात को महबूब गर्दान और मुझे जल्द अपनी ज़ियारत नसीब फरमा। अभी मेरवान वहाँ से निकल कर घर के बाहर नहीं पहुँचे कि अबू हुरैरा की जान चली गई। और इनको एक मौके पे किसी ने कहा कि अबू हुरैरा फलां शख्स आपकी बुराई कर रहा था। तो इन्होंने कहा कि भाई मुझे हर वक्त तीन बातों का गम है। नंबर एक, आज तो नेकियां कर रहा हूँ, मौत के वक्त पता नहीं क्या कर रहूँगा। दूसरी ये बात है कि जब नामे अमाल बटेंगे तो मेरा पता नहीं दाएं में आएगा कि बाएं में। और तीसरा गम ये रहता है कि पुल सरात से आफिया से गुजर भी जाऊँगा कि नहीं। और अगर मैं इन तीन जगहों से खैर से गुजर गया तो मुझे कोई परवाह नहीं, लोग मुझे अच्छा कहेंगे बुरा कहें। और अगर मैं इन तीन में से किसी एक जगह भी रोक लिया गया तो दुनिया के हर बंदे को हक है कि वो अबू हुरैरा को बुरा कहे। तो ये थे अबू हुरैरा, इल्मी शख्सियत है। इस पारे में इल्म का बहुत जिक्र है, बल्कि ये वाहिद पारा है कि जिसमें दो दुआएं इल्म से मुतल्लिक हैं, जो दो जलीलुल कदर पैगम्बरों की। कौन सी? देखिएगा सूरत तौहा 114, रब्बी ज़िदनी इल्मा, नबी सल्लम की दुआ। और तौहा 25:28, रब्बिशराहली सदरी व यस्सिरली अमरी वाहलुल उक़दत मिन लिसानी यफ़क़हु क़ौली, हज़रत मूसा की दुआ जो फ़िरौन के सामने पेश होते वक्त उन्होंने मांगी थी। और ये दुआएं सिखाती हैं कि इस बारे में इल्म की बहुत सी गुत्थियाँ खुलेंगी।